ओम शांति।
सभी तीन बार बोलेंगे
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर सविता बहन उपस्थित हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर सविता दीदी का परिचय इस प्रकार से है। डॉक्टर सविता दीदी को हम बचपन से ही जानते हैं, इसे मैं मेरा सौभाग्य ही कहूंगी कि आदरणीय सविता दीदी के अंग संग रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। आप बाल्यकाल से ही बहुत मेधावी होने के कारण पढ़ाई में सदा अव्वल नंबर वन रहे। बचपन में ही आपने डॉक्टर बनने का सपना अपने बाल मन में संजोया था। उसे आपने अपनी युवावस्था में अपनी सच्ची लगन और अथक परिश्रम से साकार कर दिखाया। सन 1974 में आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए। ब्रह्मा कुमारीज में दिए जाने वाले ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग ध्यान को आपने गहराई से समझकर अपने जीवन में आत्मसात किया। राजयोग के नियमित अभ्यास से आपको जो सुखद अनुभूतियां हुई उनसे प्रेरित होकर सन 1989 में आपने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। आप स्वभाव से सरल मृदुभाषी तथा हर्षित मुख हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज वुमेन विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका तथा ब्रह्मा कुमारीज के मानसरोवर परिसर की निर्देशिका हैं। आपने भारत सहित विदेश के अनेक देशों की यात्रा कर अनेक आत्माओं को परमात्म संदेश दिया है। वर्ष 2023 में यूएसए की ग्लोबल विमेन एम्पावरमेंट संस्था द्वारा वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। आपके लिए कुछ भाव सुमन अर्पित कर रही हूँ। ममता की मधुर छाया आप सेवा का सुंदर सार हैं। ममता की मधुर छाया आप सेवा का सुंदर सार हैं। सविता दीदी, सचमुच आप ईश प्रेम का उपहार हैं। आपकी मुस्कान में जैसे शांति का झरना बहता है। आपके एक एक शब्द से आत्मा को नव जीवन मिलता है। आपकी एक एक शब्द से आत्मा को नव जीवन मिलता है। तो बहुत ही सुंदर विषय क्रोध मुक्त कैसे बने लेकर आप हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगिनी सविता दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। अभी रविवार की मुरली में बाबा ने कहा, मुरली तो शिवरात्रि की थी, तो बाबा ने कहा कि शिव पर अर्पण करते हैं फूल, अक के फूल, तो कौन से अक का फूल हमें बच्चों को अर्पण करना है? क्रोध के अक का फूल। तो ऐसे तो हमारा लक्ष्य ही है कि हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। संपूर्ण पवित्र बनना माना संपूर्ण निर्विकारी बनना, केवल काम विकार पर विजय नहीं लेकिन सभी विकारों पर हमारी संपूर्ण विजय हो, यानी विकारों के अंश वंश को भी हम जीतें। तो काम विकार को जीतने की तो थोड़ी हम खास मेहनत करते हैं लेकिन क्रोध पर विजय पाना मुश्किल लगता है। और क्रोध के लिए बाबा कहते हैं कि ये हमारे संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष हो जाता है, और विकार जो होते हैं वो थोड़ा गुप्त होते हैं लेकिन क्रोध दिखाई देता है, और इससे बाबा की बदनामी भी होती है। और अगर हम ऐसा कोई शब्द बोलते हैं या ऐसा गुस्से में आकर कुछ करते हैं जिससे बाबा की बदनामी हो तो क्या कहेंगे? सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। हाँ, तो फिर ठौर माना ऊंच पद हम नहीं पा सकते क्योंकि ये विकर्म बनता है हमारा, और विकर्म का 100 गुना दंड हो जाता है। तो हम गुस्से को अपने समझें, क्या हमारा गुस्सा किस किस रूप में आता है, उसका क्या निवारण है। पुरुषार्थ तो हमें करना है, अटेंशन रखेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे तो ही हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम जो आपको ये दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली हम बाहर वालों को जो क्रोध को हम कैसे मैनेज करें उस विषय में जैसे समझाते हैं, उसी तरह से हम आपको ये स्लाइड्स फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गुस्सा नहीं करता हो। आज कलयुग में, कलयुग ही इसलिए कहते हैं क्योंकि कलह क्लेश का युग है, तो कोई परिवार ऐसा नहीं जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता। आप सब परिवार वाले बैठे हैं, कोई कह सकता है मेरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है? होता है, नहीं होता? कहते हैं कलयुग में सारा संसार ही युद्ध स्थल बन जाता है। इसीलिए जितने भी समाचार हैं, चाहे वो टीवी चैनल हैं, चाहे न्यूज़पेपर हैं, चाहे वो रेडियो है, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें क्रोध के कारण हिंसा और हत्या का समाचार ना हो। तो अभी ही कुछ समय पहले एक समाचार जो हमने पढ़ा था कि एक इंजीनियर थे, उनकी पत्नी को मायके जाना था, तो उन्होंने मना किया, नहीं जाना है, जो भी कारण रहा हो, लेकिन उसको जाना था। तो वो फिर कहने लगी मुझे जाना है, तो दोनों में बहस हो गई इस बात को लेकर। फिर बात बढ़ गई तो वो गुस्सा इतना आ गया उनको कि उसकी गोदी में 5-6 महीने की बच्ची थी, उसको उठाकर उन्होंने फेंक दिया और वो क्या हुआ, मर गई। अब बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन गुस्से में इंसान का विवेक नष्ट हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि हमने किसी की हत्या तक कर दी। तो इसलिए कहा, गुस्सा थोड़े समय का पागलपन है। मनोविज्ञान कहता है गुस्सा थोड़े समय का पागलपन है। जैसे पागल व्यक्ति को ये एहसास नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ऐसे ही क्रोध में मनुष्य की स्थिति होती है, और वो ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो उन्हें नहीं बोलने चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता। तो सुनने वाले को बहुत दुख पहुंचता है और वो कभी नहीं भूल पाता कि आपने उसको क्या कहा, और उसका असर हमारे संबंधों पर आता है। संबंधों में प्रेम खत्म, मजबूरी है तो लोग साथ में रहते हैं लेकिन प्रेम नहीं रहता, और कई बार तो संबंध टूट भी जाते हैं, हमेशा के लिए ही कई बार संबंध टूट जाते हैं गुस्से के कारण कि हमने गुस्से में ऐसे शब्द कहे। फिर ये एक एसिड की तरह है, एसिड को जिस पात्र में डाला जाता है ये उस पात्र को ही नष्ट करता है। ऐसे ही गुस्सा जो करता है वो पहले अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, बाद में किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे तो, लेकिन पहले किसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अपनी ही हानि कर रहे हैं। और गुस्से से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, समस्याएं हमारी और ही बढ़ जाती हैं, और गुस्सा करने वाला व्यक्ति कभी आदर्श नहीं हो सकता। और ये एक इन्फेक्शियस डिजीज की तरह है जो लग जाता है, आप गुस्सा कर रहे हैं तो सामने वाला भी क्या करेगा, गुस्से से ही बात करने लगेगा। और गुस्से की जो तीव्रता होती है हमारी, नॉर्मली हम या तो चिढ़ते हैं, अगर हल्का गुस्सा आया तो हम चिढ़ के जवाब देंगे, नाराज हो जाएंगे, है ना, चिढ़ना और कूड़ना जिसको बोलते हैं, अंदर ही अंदर हम माना कुछ स्पष्ट नहीं बोलेंगे लेकिन मुंह में ही जैसे हम उसका जवाब दे रहे हैं, तो इस तरह से हमारा गुस्सा व्यक्त होता है जो हल्के रूप में है। लेकिन जो बेकाबू गुस्सा होता है, वो बताया कि बेकाबू गुस्सा, लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं, चीजों को उठाकर फेंक देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, और यहाँ तक कि किसी की हत्या तक भी कर देते हैं, ये बेकाबू गुस्सा है। तो ब्राह्मण इस लेवल तक तो नहीं जाते हैं, बेकाबू गुस्सा नहीं होता है ब्राह्मणों का, इतना तो कंट्रोल आ जाता है कि दुनिया वालों जैसा गुस्सा हम नहीं करते। पर कौन सा रहता है हमारा, माइल्ड वाला, वो चलता रहता है। इसको बाबा कहता है गुस्से का जो अंश वंश है उस पर विजयी होना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, आप में से कोई कहेगा मुझे गुस्सा नहीं आता है, अभी बाबा के बनने के बाद पूरी तरह से गुस्से पर विजय हो गई मेरी, हाथ उठा सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम ताली बजाएंगे जरूर, पहले हाथ तो उठाए कोई। हाँ जी हाँ जी, उठाओ उठाओ, जिसने जिसको लगता है मुझे अंदर भी मन में भी गुस्सा नहीं आता है। माना बोल कर तो हम गुस्सा करते हैं, वो दूसरों को दिखाई देता है, लेकिन मन में गुस्सा करते हैं वो हमको ही पता होता है, दूसरों को नहीं पता चलता है। तो जो समझते हैं मन में भी गुस्सा नहीं आता किसी की कोई भी बात को लेकर के, वो हाथ उठाओ। हाँ, एक भाई हाथ उठा रहे हैं, चलो ताली बजाइए उनके लिए। हाँ, कि जिसने अपने क्रोध को जीत लिया है। तो हम गुस्से की भावनाओं को दो तीन तरह से व्यक्त करते हैं, है ना। एक तो एग्रेसिव वे, जो बताया, एग्रेसिव वे का मतलब बिना सोचे समझे हम रिएक्ट करते हैं, बस कोई कारण होना चाहिए। बिना कारण के तो गुस्सा नहीं आता है, पर कोई भी कारण बना, किसी ने मेरी बात नहीं मानी या किसी ने कुछ ऐसा किया, तो सोचेंगे भी नहीं लेकिन सीधा सीधा रिएक्ट करेंगे एग्रेसिव वे। जैसे एक फैमिली में, घर में माता जो है वो टीवी देख रही थी, टीवी सीरियल देख रही थी, और शाम का टाइम था, पति घर में पहुंचे और उस दिन क्रिकेट मैच आ रहा था, तो उनको क्रिकेट मैच देखना था और घर में एक ही टीवी था। उन्होंने क्या किया, रिमोट उठाया और अपना स्पोर्ट्स चैनल लगा दिया। अब वो जो सीरियल चल रहा था वो थोड़ा, जैसे कहते ना, पीक पर जैसे होता है कोई, मतलब अब क्या होगा अब क्या होगा, तो हाँ सस्पेंस कहो या जो भी कहो, मतलब क्लाइमैक्स इसको बोलते हैं, कोई क्लाइमैक्स वाला सीन चल रहा था, तो उसको गुस्सा आ गया कि मेरे से बिना पूछे जो है वो चैनल चेंज कर दिया। तो उसने रिमोट छीना उनके हाथ से और फिर से अपना चैनल लगा दिया। अब पति को भी गुस्सा आ गया क्योंकि वो भी बाहर से आए थे, उन्होंने फिर उसके हाथ से छीना और फिर अपना चैनल लगा दिया। अब ऐसे छीना झपटी चलती रही, कोई किसी की मानने के लिए तैयार नहीं, तो आखिर वो माता को इतना गुस्सा आया कि उसने रिमोट खींच के और उठा के ही फेंक दिया, और वो कहाँ लगा, टीवी पर, टीवी ही टूट गया। अब देख लो तो क्या कहेंगे इसको, एग्रेसिव वे, बिना सोचे समझे रिएक्ट किए जा रहे हैं। माना एक दो को समझने की कोशिश कर सकते हैं ना, तो दूसरा तरीका है एसर्टिव वे। एसर्टिव वे का मतलब हम सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब उसको समझना चाहिए कि अभी ऑफिस से आए हैं, बाहर से आए हैं, अच्छा इनको अपना देखना है, मैं तो घर में देख ही रही हूँ, अभी जितने समय से वो देख रही होगी तो इनको देखने देते हैं, अभी तो बस लड़ाई की बात ही नहीं होती। और अगर इतना ही शौक है टीवी देखने का, तो फिर घर में एक दूसरा टीवी ले लो, दूसरे कमरे में दूसरा टीवी लगा के तुम अपना देखो, तुम अपना देखो। तो ये है एसर्टिव वे, कि हम उसका समझ करके क्या समाधान हो सकता है। अब टीवी फोड़ना ये तो कितना बड़ा नुकसान कर दिया है ना। तो और तीसरा तरीका होता है, लोग गुस्से को पी जाते हैं, कुछ भी अब बोलते नहीं, चुप रहते हैं, सहन कर लेते हैं। और ज्यादातर ये कब होता है, मानो आप अपने अधिकारी के सामने हैं, बॉस कोई कारण से आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, अब आप उनके सामने बोल तो नहीं सकते क्योंकि बोलेंगे तो नुकसान हो सकता है, तो चुप रहते हैं। ऐसे ही घर में भी, मानो कोई हमारे से बड़े हैं और हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं और वो कोई कारण से हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो फिर सामने वाला थोड़ा चुप रह जाएगा, लेकिन गुस्सा उसको आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा उसको, तो अंदर ही अंदर उसको दबाते हैं। और अगर बार बार ये स्थिति बनती है कि हम बार बार अपना गुस्सा दबाते हैं, तो क्या होता है, वो गुस्सा हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। ऐसे गुस्से से लोग कई बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, उनका आत्मसम्मान कम होने लगता है, फिर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और अगर लंबे समय तक ये चलता है, क्योंकि अंदर में वो कहीं ना कहीं थोड़ी बदले की भावना बनी रहती है, वैर भाव जिसको आता है, वो नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं, तो उसके कारण सालों बाद कभी कैंसर तक में भी वो गुस्सा बदल जाता है, माना बीमारियों का रूप लेता है। तो गुस्से को दबाना ये उससे भी हानिकारक है, जो गुस्से को व्यक्त करना वो भी हानिकारक है, वो भी दिखाएंगे आपको कि कितना उसका प्रभाव होता है। तो जब व्यक्ति गुस्से में होता है तब उसका शारीरिक स्थिति कैसी होती है, कहते हैं व्यक्ति का चेहरा तमतमा जाता है, लाल हो जाता है गुस्से में, जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है उसकी मांसपेशियां तन जाती हैं, तो मुट्ठियां भिज जाती हैं उसकी, जब वो गुस्सा करता है तो दांत मुट्ठी ये सब भिज जाते हैं, और पूरा शरीर जो है वो कांपने लगता है उसका, और स्थिर नहीं रह पाता व्यक्ति, इसीलिए क्योंकि सारा ब्लड फ्लो जो है वो मांसपेशियों की तरफ होता है, इसीलिए वो मारने के लिए हाथ पांव चलने लगते हैं जो गुस्से वाला व्यक्ति होता है, दिमाग की तरफ ब्लड फ्लो खत्म, तो विवेक तो काम नहीं करता, और सारा ब्लड फ्लो कहाँ आ रहा है, हाथ पांव में आ रहा है, तो हाथ पांव ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और सांस जो है उसकी तेज तेज चलती है, और गुस्से का परिणाम हमेशा पश्चाताप के रूप में ही होता है, व्यक्ति को गुस्से के बाद पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसा किया ऐसा बोला, और उसके हमारे शारीरिक प्रभाव जो होते हैं, क्योंकि क्रोध में हमारे शरीर में जो केमिकल्स बनते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं गुस्से में होते हैं, गुस्सा भी स्ट्रेस का ही एक रूप है, तो हमारे शरीर में कैटाकोलामींस बनते हैं, एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन जिसे कहते हैं, इसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ता है, उसका असर हमारे हार्ट पर आता है, और हमारे हार्ट की जो नलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो हार्ट को जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो ऑक्सीजन फ्लो कम होता है। अगर किसी के कोरोनरी ब्लॉकेजेस हैं, और आजकल 30-40 साल की उम्र में ही लोगों को कोरोनरी ब्लॉकेजेस होने शुरू हो जाते हैं, और फिर गुस्से में हमारी जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है, और इसीलिए एंजाइना या हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बार ऐसे ही हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया जिसको माइल्ड हार्ट अटैक हुआ था, तो उसको एडमिट किया CCU में, तो जो नर्स थी वो दूसरे पेशेंट में बिजी थी, तो उसको उस पेशेंट तक आने में थोड़ा टाइम लगा, तो जब वो आई तो वो गुस्से में आ गया कि मैं इतनी देर से अस्पताल में आया हूँ, कोई मुझे देख ही नहीं रहा है, कोई मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, और गुस्सा करने के कारण उसका जो माइल्ड अटैक था वो मैसिव अटैक में बदल गया, और फिर उन्होंने कितना भी इलाज किया उसको फिर वो बचा नहीं पाया। इसलिए हार्ट पेशेंट्स को डॉक्टर बोलते हैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, रिलैक्स रहना है, लाइफ में पीसफुल रहना है, तो क्योंकि गुस्से का प्रभाव हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट पर आता है। इसीलिए घरों में कोई लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं ज़्यादा गुस्सा मत करो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो पता होता है सबको कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है अगर हम ज़्यादा गुस्सा करेंगे, हमारे दिमाग पर भी इसका असर आता है जो बताया आपको। और दूसरा, जो ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी बहुत बारीक होती हैं कई बार, और जब ज़्यादा उम्र है, मानो 70 साल से ऊपर की उम्र है, तो ये हार्ड भी हो जाती हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, तो इसीलिए अगर गुस्से में बीपी बढ़ा तो वो फट सकती है खून की नली, तो उसकी वजह से हैमरेज हो सकता है, तो हमारे ब्रेन को भी नुकसान पहुँचता है। और हमारी मांसपेशियां जो 80 मांसपेशियां हैं वो गुस्से में तनाव में आ जाती हैं, तो उसके बाद सिर दर्द हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, ये स्टेरॉइड्स रिलीज करता है, इससे हमारी इम्यूनिटी कम होने लगती है। फिर मानसिक प्रभाव तो हम देखते ही हैं, गुस्से के बाद मन शांत हो जाता है, अशांत हो जाता है मन, और हम टेंशन में होते हैं, और उसके साथ साथ हमारा चिड़चिड़ापन, दूसरे के प्रति वैर भाव, नफरत का भाव, जो नेगेटिव फीलिंग्स है, माना नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है हमारा, और हमारी एकाग्रता की शक्ति कम हो जाती है, निर्णय शक्ति भी कम हो जाती है, उस समय अगर कोई बुद्धि का काम करना है तो हम नहीं कर पाते हैं। तो ये मानसिक प्रभाव भी हम गुस्से के देखते हैं तुरंत, और सामाजिक प्रभाव भी हम वर्क प्लेस पर हम देखते हैं, काम जहां आप कार्य करते हैं। अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप बिना मतलब दूसरों को अपना दुश्मन बना लेते हैं, महसूस करते हैं ना। अगर हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, फिर उसका सहयोग हमें नहीं मिलेगा, हमारे लिए उनकी भावनाएं जो हैं वो पूरा बदल जाती हैं। कहते हैं जहां गुस्सा होता है वहां पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। इसका मतलब ये हमारे जीवन की सुख शांति समृद्धि को खत्म कर देता है। तो जो गुस्से वाला व्यक्ति है वो अपनी सुख शांति तो खत्म करता ही करता है, दूसरों की भी सुख शांति खत्म कर देता है। और समाज में हम देखते हैं आज जो भी गैर कानूनी गतिविधियां हैं, हड़ताल करते हैं लोग, तोड़फोड़ करते हैं या हिंसा करते हैं, आज जो भी आतंकवाद और युद्ध की घटनाएं हैं उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, क्रोध। क्रोध के कारण ही आज समाज में ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं, चाहे वो सरकार के प्रति गुस्सा है उनका, चाहे वो धर्म के लिए गुस्सा है, जो भी कारण से माना वो क्रोध को इस रूप में वो सामाजिक रूप में व्यक्त करते हैं। तो जो गुस्सा है वो चार प्रकार से हम करते हैं। एक है पानी पर लकीर के समान, पानी पर जो लकीर है वो रुकती नहीं है, ऐसे ही कईयों का गुस्सा होता है, आया और गया, माना मन में कुछ नहीं रहता है उनके। और ये ज्यादातर गुस्सा होता है माँ का, माँ का बच्चों के प्रति गुस्सा कैसे होता है, उस समय बोल देगी लेकिन फिर वो उससे भी ज्यादा प्यार करेगी, उसको मन में कभी नहीं रखती है क्योंकि बच्चे से प्रेम है, तो बात खत्म। कितना भी बड़ी गलती करेगा बच्चा उसको माफ कर देगी। रहता है कभी माताएं बैठी हैं यहाँ पर, हाँ, बच्चों के प्रति जो है वो गुस्सा आया और गया, माना जिनके प्रति हमारी शुभ भावना होती है, हमारा कंट्रोल नहीं है इसलिए गुस्सा तो कर गए लेकिन मन में उसको नहीं रखते हैं। फिर दूसरा है लाइन इन सैंड, यानी रेत पर लकीर के समान, यानी रेत पर जो लकीर होती है वो कुछ घंटों ठहरती है। तो जो हम समीप संबंधों में रहते हैं उनमें अगर कोई कारण से गुस्सा हो गया तो फिर कुछ घंटों तक उसका असर चलता है। मानो पति पत्नी के बीच में कोई बात हो गई, सास बहू में हो गई, या जो भी हमारे भाई बहन हैं उनमें हो गई, तो अब साथ में रहते हैं तो बिना उसके क्या कहते हैं एक दो से बात किए ज्यादा समय तो नहीं चल सकता, गुस्से की नाराजगी थोड़ा घंटे चलती है ना, आपस में नाराज रहेंगे, बातचीत नहीं करेंगे लेकिन फिर काम नहीं चलता है इसलिए कोई ना कोई झुक जाता है और माफी मांग लेते हैं और फिर वैसे के वैसे। तो ये गुस्सा परिवारों में होता है। फिर तीसरा प्रकार का गुस्सा जो है वो है मिट्टी पर लकीर के समान। मिट्टी पर लकीर के समान माना रिश्तेदारों में, रिश्तेदारों में कोई बात लेकर के अनबन हो गई है ना, मतलब कोई अवसर होता है, त्योहार होता है, शादी ब्याह जो भी है उसमें हम आपस में मिले और कोई बात को लेकर कहा सुनी हो गई, अब वो दिनों तक चलेगी क्योंकि हम रोज तो मिलते नहीं रिश्तेदार, फिर जब दोबारा मिलेंगे उस बात को स्पष्ट करेंगे, कुछ आपसी समझ बनेगी तब बात ठीक होगी, तो वो लंबा चलता है। फिर कुछ एक का गुस्सा होता है चट्टान पर लकीर के समान। चट्टान पर जो लकीर होती है वो अमिट होती है, वो कभी भी मिटती नहीं। तो कईयों के मन में किसी के प्रति जो वैर भाव होता है जीवन पर्यंत रहता है, मिटता ही नहीं वो, और दूसरे जन्म तक भी लेकर जाते हैं उसको। हालांकि रेयर होता है लेकिन फिर भी होता है, पीढ़ियों तक दुश्मनी चलती है, माना पीढ़ियां भी निभाती हैं कि दादा की दुश्मनी थी तो पोता निभाएगा, है ना। तो ऐसे कहीं कहीं देखने में आता है, तो ये ऐसे भी गुस्सा चलता है। तो क्यों हमें गुस्सा आता है, गुस्से के कारण क्या है, छोटे कारण से लेकर बड़े कारण तक हो सकते हैं। तो मानो कोई हमारी चीज हमसे बिना पूछे यूज कर लेता है। पहले तो आपसे पूछना चाहिए हाँ, कौन से कारण होते हैं जो आपको गुस्सा आता है, क्योंकि हम सभी को गुस्सा आता है। जैसे एक ही व्यक्ति ने हाथ उठाया ना जिसको नहीं आता, बाकी सबको तो आता है। तो क्यों आता है, हरेक के अपने अपने कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सारे कारण हमारे भी हमारे हों। कोई कारण किसका हो सकता है, कोई कारण किसका हो सकता है। तो क्यों गुस्सा आता है जी, कोई हमारी बात ना माने, सबसे जो आम कारण है 70% हमें गुस्सा इसलिए आता है कि इसने मेरी बात नहीं मानी, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर रही है। अच्छा, और कोई गलत कर रहा है, गलत कर रहा है माना वो उसकी गलती हमें सहन नहीं होती क्यों गलत कर रहा है, और कोई झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है और हमको धोखा दे रहा है, हम सोचते हैं इतना विश्वास करते हैं कि ये झूठ नहीं बोलेगा और वो झूठ बोल रहा है, और जी समझाने के बाद भी बार बार गलती करता है कोई, बराबर है, गुस्सा हम इतना सहन नहीं कर सकते किसी को, है ना, हमारा ही धीरज खत्म हो जाता है और फिर हम, और जी फोन देखते हैं माना हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं करते, अपनी मर्जी से चलते हैं, इसीलिए गुस्सा आता है। हम चाहते हैं वो फोन ना देखें और बच्चे फोन देखते हैं। अच्छा, और जी ईर्ष्या के कारण भी आता है, बिल्कुल ईर्ष्या के कारण भी आता है। हाँ बोलिए, इनजस्टिस होती है तो भी गुस्सा आता है ना, कोई हमारे से अन्याय करता है निश्चित है गुस्सा आता है। और जी हम बिना बताए हमारी चीज यूज कर लेता है, तो बराबर है कि भाई मेरे को पूछो तो सही कि वो चीज ले सकते हैं या नहीं ले सकते। और गलत हैबिट, हाँ किसी की रेपुटेशन माना आप बेइज्जती कर रहे हो, हाँ चार लोगों के सामने आप ऐसा कुछ बोल रहे हो तो फिर गुस्सा आता है। और हमारा अधिकार नहीं मिलता तो गुस्सा आता है। तो आप सब बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं, अपने अपने अनुभव की सुना रहे हैं जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। तो अभी हम देखते हैं हाँ कि ये सब कारण माना वही जैसे है कि चार लोगों के सामने अगर कोई मेरा मजाक बनाता है, कोई मुझे अपमानित करता है, और हम पहले से ही बहुत काम कर रहे हैं ऊपर से और काम बता रहे हैं हमको, हाँ तो गुस्सा आता है, इतना काम पहले ही पड़ा है अभी और भी बताए, और जो गलती मैंने नहीं की वो उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं, आता है नहीं आता, आ जाता है ना। और ऐसे ही कोई हमारा काम हमने किया और सामने वाले ने हमारा काम बिगाड़ दिया तो गुस्सा आता है। फिर कोई हमें गलत रास्ता बता देता है और हम गलत रास्ते पे गए, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, हाँ तो कई लोग उसके कारण वहीं बैठे बैठे ही गाड़ी में ही बैठे बैठे गुस्सा करते रहते हैं, सिस्टम को कोसते रहते हैं। तो जो भी कारण है ना, ये चाहे छोटे कारण है या बड़े कारण जो भी आपने भी शेयर किए, तो जो भी कारण है उन कारणों का निवारण हमें करना है। बाबा हमेशा कहता है कारण नहीं सोचना है, क्या सोचना है, समस्या नहीं सोचनी है, समाधान सोचना है। तो बाबा ने हमें उसके लिए जो समाधान बताया है वो समाधान ज्ञान को हम यूज करेंगे, उसका निवारण कर लेंगे तो गुस्से पर हमारी विजय हो जाएगी। तो परिस्थिति नहीं आएगी गुस्सा पैदा करने वाली, ये संभव नहीं है। जैसे कहा कि कोई हमारी बात नहीं मानता या जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा हमारे साथ नहीं करता, तो बाबा ने हमें क्या समझ दी है, हरेक आत्मा का स्वभाव संस्कार अलग अलग है। तो दूसरे का स्वभाव मेरे जैसा होगा जरूरी नहीं है, हरेक कोई मेरी बात मानेगा ये कोई जरूरी नहीं है। तो अगर वो उनका स्वभाव उनका व्यक्तित्व मेरे से अलग है तो हमको उनको समझने की जरूरत होती है कि वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। तो जब हम उन्हें ये समझ में आता है, क्योंकि हर एक का नजरिया अलग अलग हो सकता है, हम जिस तरह से सोचते हैं वो भी सही हो सकता है, वो जिस तरह से सोचते हैं वो भी अपनी जगह सही हो सकते हैं, तो जब हम उनको समझते हैं तो फिर क्रोध की स्थिति ही पैदा नहीं होती। इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ जहां होती है। तो ज्ञानी व्यक्ति हमेशा दूसरों को समझने की कोशिश करता है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। अब जैसे आपने कहा कि बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, मानो तो पहले हम उसे समझाने की कोशिश करें कि मोबाइल देखने से क्या नुकसान है। अगर हम उनको कन्विंस कर पाएंगे तो वो, और ये भी कि बिल्कुल नहीं देखना है, ये तो संभव है ही नहीं आज के जमाने में, तो हमें एक टाइम लिमिट की, भाई ठीक है आप देखो, लेकिन एक घंटा आप देख सकते हो या एक घंटा आप इसमें गेम खेल सकते हो, जो भी। बच्चे को जो आदत लगाने वाले हैं वो हम ही हैं, हम ही मोबाइल पकड़ाते हैं उनको। पहली बात तो एक सर्टेन एज तक हमें बच्चे को मोबाइल देना ही नहीं है। 15 साल की उम्र तक आप निश्चित कर लो कि बच्चे को हमें मोबाइल देना ही नहीं है। कोई स्कूल के कारणों से कभी देना पड़ता है तो बस उतना ही टाइम जितना कि उसका स्कूल का काम हो जाए, और वो भी कोई रहे, माँ रहे या पिता रहे उनके साथ में जब वो अपना स्कूल का काम कर रहा है। पर अगर आदत पड़ भी गई है तो फिर हमें उनको वो कन्विंस करना है कि क्यों मोबाइल को हमें थोड़ा समय ही यूज करना है, इसके क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं। तो समझ, जहां समझ है वहां क्रोध की बात नहीं होती। फिर दूसरा, हम कंट्रोल करने के लिए गुस्सा करते हैं, खासकर जैसे कहा कोई काम नहीं कर रहा, काम में गलती कर रहा है, तो काम करवाने के लिए गुस्सा किया तो काम तो हो जाता है, क्योंकि सामने वाला जो है वो भय के कारण चुप रहता है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो भविष्य में मेरा नुकसान हो सकता है। तो काम तो हो जाता है लेकिन उसकी भावनाएं बदलने लगती हैं। जो रिस्पेक्ट होना चाहिए उसका हमारे प्रति, जो स्नेह होना चाहिए वो समाप्त होने लगता है, और मन में कहीं ना कहीं बदले की भावना होती है, और वो मौका ढूंढते हैं, और जब भी उनको मौका मिलेगा वो आपके लिए समस्या जरूर पैदा करेंगे। तो भविष्य परिणाम क्या हो सकते हैं? बुरे हो सकते हैं, और होते भी हैं। कईयों के साथ ऐसा ऐसा बुरा कर देते हैं लोग ना, जिनके मन में भी बदले की भावना होती है कि वो सोच भी नहीं सकते। फिर कोई हमसे गुस्से से काम कराए तो हमें पसंद आता है, हमें लगता है काम तो करना ही है, थोड़ा प्यार से तो बोल सकते हैं, थोड़ा अच्छे शब्दों में तो कह सकते हैं। तो जो व्यवहार हम अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों को भी पसंद होता है। फिर जैसे कहा अन्याय की बात, हाँ, फिर बच्चों के लिए भी, बच्चों को भी कंट्रोल करने की, हम गुस्से से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आपने गुस्सा किया, खासकर माताएं है ना, इस बात की बहुत शिकायत करती हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते, पढ़ते नहीं है, तो गुस्सा करना ही पड़ता है, बिना गुस्से के तो बच्चे सुनते ही नहीं है। तो आपने गुस्सा किया, बच्चा भी भय के कारण चुप हो जाता है, और आप जो उनसे इच्छा रखते हैं, किताब खोल के बैठ जाएगा, टीवी देखना छोड़ देगा या जो भी, लेकिन गुस्से में हम कई बार बोल जाते हैं, हमारा कंट्रोल नहीं रहता है ना, ये नालायक है, ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं, मतलब जो भी उस समय मेरे मुंह में आया मैंने बच्चे को कहा। अब वो किताब तो खोल ली उसने, अब वो पढ़ रहा है, वो सोच रहा है मेरी माँ ने मुझे ऐसे कहा, मेरे पिता ने मुझे ऐसे कहा, और कई बार बच्चे वैसे बनने लगते हैं, और फिर हम ही उनको गुस्सा करना सिखाते हैं, क्योंकि हमने गुस्से से अपनी बात मनवाई तो वो सोचते हैं अगर हमें अपनी बात मनवानी है तो क्या करना पड़ेगा, गुस्सा करना पड़ेगा। वो थोड़े बड़े होते हैं, पलटकर आप पर गुस्सा करने लगते हैं, फिर आप सोचते हैं बच्चे क्या सीख रहे हैं, तो कौन सिखा रहा है, हमने सिखाया ना, हमने जैसा आचरण किया हमारा बच्चा वैसा ही सीखेगा। तो जैसे कहा ये सही तरीका नहीं है, सही तरीका यही होता है कि हमें बच्चे को समझाना है कि वो ऐसा क्यों करे। आज साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना है, बच्चे हर बात के पीछे कारण जानना चाहते हैं, वो पहले आकर के क्यों करेंगे आपको, है ना, तो क्यों का जवाब देना पड़ेगा ना। तो अगर हम उसको उसके क्यों का जवाब देते हैं कि वो ऐसा क्यों करे, अगर हम उसको कन्विंस कर लेते हैं तो वो जरूर हमारी बात मानते हैं, और हमें उसमें धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा हम समय दें उनको, प्रेम से समझाएं। एक बार में नहीं समझ में आता है तो दो बार तीन बार समझाएं। हमें एक बार में सब बातें समझ में आ जाती हैं? हाँ आती हैं, तो वो तो बच्चा है, उसको भी दो चार बार लग सकता है समझने में, तो उतना धैर्य तो फिर हमको भी रखना पड़ेगा। तो इसीलिए गुस्से से कंट्रोल नहीं करें हम, हमेशा प्रेम से समझाएं। फिर जब अन्याय होता है, हाँ बाबा तो हमें रोज ही समझाते हैं, और बाबा कितना धीर, बाबा का धैर्य तो सागर के समान है। हम तो रोज गलतियां करते हैं, रोज बाबा समझाते हैं और रोज गलतियां करते हैं, तो बाबा कभी गुस्सा करते हैं हमारे ऊपर? फिर भी मीठे मीठे बच्चे ही होता है, है ना। तो इसीलिए बच्चों के प्रति भी बाबा के समान हमें बनना है। और जो अन्याय की बात कही, आप में से भी कहा कि कभी हमारे साथ अन्याय होता है या पक्षपात होता है तो फिर हमें सहन नहीं होता, तो यहां पर गुस्सा करने से अन्याय समाप्त नहीं होगा। अगर लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो हम उसके बारे में बात करें, जो भी संबंधित व्यक्ति है उस अपना पक्ष रखें हम उनके सामने, हो सकता है कि वो हमारी बात को समझें। फिर भी अगर वो नहीं समझते तो हम अगर कोई तीसरे व्यक्ति की मदद लेना चाहें तो उसकी भी मदद हम ले सकते हैं, लेकिन गुस्सा करने से अन्याय बढ़ सकता है, अन्याय कम नहीं होगा। फिर कोई झूठ बोलता है, जैसे कहा अब झूठ बोलने वाला अगर झूठ बोल रहा है और हमें समझ में आ गया कि ये झूठ बोल रहा है और हमने गुस्सा किया, उससे वो झूठ बोलना बंद नहीं करेगा। किसी का संस्कार हम गुस्से से नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ हम उसको सावधान कर सकते हैं कि अगर वो झूठ बोलेगा तो उसके उसका जो विश्वास है वो कम हो जाएगा। और हमें रियली ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हमको धोखा दे सकते हैं। और बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, उसने झूठ बोला मुझे गुस्सा आया, वो तो गलत कर ही रहा है ना, वो तो फेल है ही, मैंने गुस्सा किया तो मैं पास हो गई क्या? तो हम भी क्या हो गए? फेल हो गए ना, तो फिर दोनों ही रॉन्ग हो गए। तो अगर सामने वाला झूठ बोल रहा है तो भी हमें गुस्सा नहीं करना है, प्यार से उसको समझाना है कि अगर वो झूठ बोलेंगे तो उनका विश्वास हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। फिर कोई हमारा क्रिटिसिज्म करता है, मानो कोई हमारे लिए अपमानजनक बात कहता है, हमारी निंदा करता है, ग्लानी करता है, ये तो गुस्से का बहुत बड़ा कारण। कई बार हम ब्राह्मण हैं तो उस समय चुप रह जाते हैं, हम बोलते नहीं हैं, लेकिन मन ही मन बहुत नेगेटिविटी है उसके कारण आ जाती है, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, और फिर जब मौका मिलता है तो छोड़ते भी नहीं है। फिर मौका मिलेगा तो हम अपनी बात को 3-4 गुना बड़ा चढ़ा करके, तो फिर क्या समझना है? बाबा कहता है ग्लानी करने वाले को क्या समझो, कैसे परिवर्तन करेंगे जो गुस्सा ना आए? ज्ञान और समझ तो बाबा ने दिया है, तो बाबा कहता है ग्लानी को भी गायन समझो, निंदा करने वाले को भी अपना मित्र समझो। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना है। और ये भी बाबा ने समझाया कि कोई आत्मा अगर ऐसा कर रही, ज्यादातर वो हमारे समीप की ही होती है, तो फिर कोई हमारा हिसाब किताब है, इस जन्म में हमने नहीं किया, हो सकता है इस जन्म में भी किया हो, पर हो सकता है इस जन्म में ना भी किया हो। तो अगर नहीं किया है तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में हमने उसका अपमान किया है और उसको हमने कुछ ऐसा बोला है, तो हिसाब अपना पूरा कर रहा है, तो कर्जा उतर गया हमारा। पॉजिटिव कैसे लेंगे उसको कि चलो इसने हमारा हिसाब किताब पूरा कर दिया? फिर भी हम उसके प्रति शुभ भावना रखेंगे, फिर भी हमारा व्यवहार उन आत्माओं के प्रति अच्छा रहे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? आग में घी डालना या आग में पानी डालना? क्रोध आग की तरह है ना, तो क्या करना है? आग में पानी डालना है ना, तो हम फायर ब्रिगेड की तरह हैं। फायर ब्रिगेड क्या करती है? आग को पानी डालकर बुझाती है। तो हमें भी, हम बाबा के बच्चे शांति दूत हैं, मास्टर शांति के सागर हैं या शांत स्वरूप आत्माएं हैं, तो क्रोध की स्थिति में कोई भी हमारे सामने है, हमें उसको शांति का दान देना है, यानी शांत रहना है, तो ये हमारा कर्तव्य है। तो ये परिस्थिति में ज्यादातर हम शांत नहीं रह पाते। ये वाला हिसाब किताब जब सामने आता है कि कोई मेरी आलोचना कर रहा है, क्योंकि इंसान को अपनी कमी सुनना पसंद नहीं होता, इंसान को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है। और बाबा कहता है जो आपकी कमी बता रहा है वो मित्र क्यों है, क्योंकि जो भी कमी है सामने वाले ने बताई वो 1% भी है तो सही मेरे अंदर, तभी तो उसने कही। तो अगर हमने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, उसको देखा कि हाँ ये कमी है, अगर हम इसे दूर करेंगे तो हमारे अंदर वो गुण आएंगे, हम आगे बढ़ेंगे अपने पुरुषार्थ में। और हम तो आए ही हैं सर्वगुण संपन्न बनने, तो हमें तो अपनी कमियां दूर करनी है ना, तो और ही उनको हमें थैंक्स देना चाहिए। पर कई बार नहीं होती है, मानो वो कमी नहीं है हमारे अंदर और सामने वाला हमारे लिए गलत गलत सलत प्रचार कर रहा है, ऐसे भी होता है। ये हिसाब किताब होते हैं, मानो गलत इल्जाम लग जाते हैं, वो गलती हमने की नहीं, जैसे कहा ना कोई हमारे पर गलत इल्जाम लगा देता है, तो फिर ऐसी स्थिति में जब वो है ही नहीं और कोई कह रहा है तो वो कमी है ही नहीं, तो हम उसे मन पर ले ही नहीं। जब मेरी बात है ही नहीं तो हम उसे क्यों स्वीकार करेंगे, और स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका हमें दुख नहीं होगा। और सच को सामने आने की शक्ति होती है, समय पर सच अपने आप ही सामने आ जाता है, तो हमें सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। बाबा कहता है सत्य सूर्य के समान है, उसे कोई भी बादल लंबे समय तक ढक नहीं सकते, थोड़ा समय तक ढक सकते हैं। तो कोई भी ऐसी स्थिति होती है हम अचल अडोल रहे हैं, जब है ही नहीं ना हमारी बात, तो इसीलिए ऐसी परीक्षाओं को हम इस पॉजिटिविटी से हम पार कर सकते हैं। और जो भी इसके निमित्त है उसके प्रति हम शुभ भावना रहम की भावना रखें, तब हम पास होते हैं। पास विद ऑनर कब हुए हम, जब कोई ऐसा कर रहा है तो भी हमारी स्थिति कैसी है, अचल है, और साथ में हम उसके प्रति शुभ भावना भी रख पा रहे हैं। फिर कोई बीमार होते हैं, मानो अब जो बीमार होते हैं घर परिवारों में होते ही हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, अधिक आयु के हैं, उनका शरीर कमजोर होता है, कई बार मानसिक रूप से भी वो उतने शक्तिशाली नहीं होते, इसीलिए उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात में उनको गुस्सा आ जाता है, फिर क्या होता है हम भी गुस्से में आ जाते हैं, माना उनके साथ फिर हम भी गुस्से में आते हैं, स्थिति कैसी होती है घर में। तो यहां पर हमें उनकी स्थिति को समझना है कि इनकी आयु अधिक है और इनकी सहनशीलता इनकी बीमारी के कारण, इनकी शरीर की अवस्था के कारण कम है, हमें इनका सहयोगी बनना है। तो हम हमेशा ही वो कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं हमें उनके साथ रिस्पेक्टफुल व्यवहार करना है और उनको हमें सहयोगी देना है, तो फिर हमको उनके व्यवहार से गुस्सा नहीं आएगा। फिर जैसे कहा असंतुष्ट हो जाते हैं जिनका ईर्ष्या का स्वभाव है, वो जब दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो असंतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर तो किन्हीं बातों में हम किसी से कम हो सकते हैं। तुलना करने का मतलब अगर तुलना की आप किसी से बेहतर हैं तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे, ईगो आ जाएगा। अगर आप किसी से कम हैं तुलना करते हैं तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे, हीन भावना आ सकती है। तो हम सभी यूनिक हैं, हम सबका अपना अपना पार्ट है, ये बाबा ने हमें समझ दी है। कोई भी दो इंसान इस दुनिया में एक जैसे हैं ही नहीं, दो का पार्ट एक जैसा है क्या, हरेक के कर्म और प्रारब्ध अपने अपने हैं, तो तुलना करना है ही नहीं है। जो पार्ट मुझे मिला है उस पार्ट में रह करके ही मुझे पुरुषार्थ करना है। अब मैं माता क्यों बनी या मैं ये ब्रह्मा कुमारी क्यों नहीं बनी, मतलब जो भी अगर हम कंपेयर करते हैं किसी के भी पार्ट से अपने पार्ट को, तो वो पार्ट तो बदलने वाला नहीं है, वो तो अनादि अविनाशी है और हर कल्प वही पार्ट रिपीट होने वाला है। नॉलेज तो दे दी ना भगवान ने हमें तीनों कालों की, तो उसको समझकर, जो सत्य है उसको समझकर, उसको स्वीकार करके। अब बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा ये पार्ट है इसलिए तुम संपन्न नहीं बन सकते, बाबा ने कहा क्या जो गृहस्थी में रहते हैं वो संपन्न नहीं बन सकते, जो समर्पित हुए वही संपन्न बन सकते हैं, ऐसा बोला है क्या बाबा ने? तो हम किसी भी पार्ट में हैं, हम पुरुषार्थ करेंगे, तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, तो हम भी ब्रह्मा बाबा क्या ग्रस्ती नहीं था, क्या ब्रह्मा बाबा उम्र वाला नहीं था, तो बाबा ने करके दिखाया ना, और नंबर वन गया, है ना। तो कोई भी पार्ट का बंधन नहीं है, हमें सिर्फ उस पार्ट में रहते हुए ही अपना पुरुषार्थ करना है। तो दूसरों से हमें तुलना नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी दो पार्ट एक जैसे हो नहीं सकते, हर एक का भाग्य प्रारब्ध अपना अपना है। फिर जब हम किसी से कुछ डिस्कस करते हैं, कई बार मानो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और लगता है कि हम कमजोर पड़ रहे हैं सामने वाले से, उसका ज्ञान हमसे ज्यादा है, तो कई लोग अपना वो स्वीकार नहीं कर पाते ना, तो अपनी बहस में थोड़ा जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं, माना गुस्से में आ जाते हैं, ताकि सामने वाला चुप हो जाए। तो ये गलत है। अगर मानो मेरा ज्ञान कम है और मुझे समझ में आ रहा है, तो हम मान ले, जैसे बाबा कहता है ना, आपको लगता है कि सामने वाला ज्यादा ज्ञानी है, तो आप कह दो कि ये मुझे अभी नहीं पता, हमारी बड़ी दीदी आपको समझा देगी, हाँ, या जो भी आप समझते हैं, जो समझा सकते हैं, उनको हम रेफर कर दें, ना कि हम अभिमान में आ जाएं और गुस्सा करें। तो कभी भी हमें इस तरह के नेगेटिव डिस्कशन में नहीं जाना चाहिए। अब ये फूड हैबिट्स जो हैं, ये एक्चुअली अज्ञानियों के लिए ज्यादा है। हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, हाँ, अगर कोई गुस्से से हमारे लिए खाना बना रहा है तो क्या होगा, हम क्यों पतित के हाथ का खाना नहीं खाते, हाँ, या क्यों हम होटल में बाहर जो भी लोग खाते हैं, उसका कारण क्या है? दोनों ही कारण है कि वो उनके मन की भावनाएं, उसका असर उस अन्न पर आता है, और वो तो कोई पवित्र है नहीं, भगवान को याद करते नहीं, वो वाइब्रेशन भोजन में उनके उसी प्रकार के होते हैं, तो इसीलिए उनका प्रभाव भी हमारे मन पर पड़ता है। तो हम अगर खाने पीने की जो हमारी शुद्धि है, बाबा को याद करके हम बनाते हैं, भोग लगा के खाते हैं, तो वो हमारे मन को शांत करता है और हमें इतना जल्दी गुस्सा नहीं आता है। तो फूड हैबिट्स का भी असर हमारे मन पर होता है। अब ये तो हुआ कारण का निवारण, कि इन कारणों में से कोई भी कारण मेरा कॉमन है जिससे मुझे बार बार गुस्सा आता है, तो हमें बाबा की वही ज्ञान की पॉइंट यूज करके पहले से, इसको बाबा कहते हैं ना, विचार सागर मंथन करो, तो अपने आप को ही हम खुद समझाएं कि ये मेरे कारण है और मुझे इस बात को याद रखना है जब इस कारण से मुझे गुस्सा आएगा, ताकि मुझे वो गुस्सा ना आए। लेकिन फिर भी कुछ और भी हम विधियां अपना सकते हैं, जैसे हम थोड़ा पोस्टपोन कर दें, मानो कोई गुस्सा कर रहा है तो हम तुरंत रिएक्ट नहीं करें, उस समय हम शांत रह जाएं, हम कहें हम अपनी बात कहेंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़ा समय के बाद, थोड़ा समय माना जितना भी, एक घंटा, आप कितना पोस्टपोन कर सकते हो, कितना धीरज रख सकते हो, उसमें दो बातें होती हैं, एक तो अपना दिमाग चलता है और अपने को समझ में आ जाता है कि सारी गलती सामने वाले की नहीं है, मेरी भी गलती है, तो हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और अगर लगता है नहीं इसकी गलती है और उसको कहना ही चाहिए, नहीं तो दोबारा यही करेंगे, तब तक हमारा आवेश कम हो जाता है। अब वही बात हम थोड़ा शांति से कहेंगे, प्रेम से कहेंगे, तो सामने वाला उसे स्वीकार करेगा, तो समाधान होता है। तो इसीलिए तुरंत हम उसे ना कहें। दूसरा है अवेयरनेस। अवेयरनेस माना हमें पता है कि ये गुस्सा हमारे लिए कितना हानिकारक है, तो केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक सामाजिक रूप से, जैसे कहा, सभी तरह से ये हमारी हानि करता है। और जैसे कहा, ज्ञान के हिसाब से तो ये हमारे लिए विकर्म भी बनाता है, और साथ में बाबा के नाम की बदनामी भी होती है। तो जब ये अवेयरनेस हमारे अंदर है, तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, पूरा अपना पुरुषार्थ करते हैं उसके लिए। जैसे कहा, दुनिया में जब लोगों को पता चलता है कि नशा करने से कितना नुकसान होता है, जैसे बच्चों को पता नहीं होता है तो वो संग दोष में आकर नशा करने लगते हैं, पर जब उनके अंदर ये अवेयरनेस आ जाती है कि शराब पीने से लिवर खराब हो जाएगा, या ड्रग्स लेने से उनके दिमाग पर पूरा असर आता है, उनके सारे सिस्टम में इतनी बीमारियां होती हैं, तो फिर कई अपने आप ही उस अवेयरनेस से ही उस नशे को छोड़ते हैं, नशा मुक्त होते हैं, तो अवेयरनेस होना जरूरी है। फिर मानो कोई गुस्सा कर रहा है तो बाबा कहता है उस समय आपको शांत रहना। कई बार बाबा कहते हैं मुख में मुलहरा डाल लो, हाँ, या हम कहते हैं कि ओम शांति, हमारे को बाबा ने ओम शांति का मंत्र दिया, 10 बार हम मन में ओम शांति, आप उनके सामने शांत रह सकते हो तो रहो, नहीं तो फिर वहां से चले जाओ, उनके सामने रहो मत, क्योंकि अगर आप रहेंगे तो क्या होने वाला है, वो गुस्सा आप में भी प्रवेश हो जाएगा, और कब आप भी गुस्से में बोलना शुरू कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो या तो आप रहो ही नहीं, तुरंत वहां से चले जाओ, और अगर रहो भी तो फिर अपने को किसी तरह से, जैसे कहा, किसी भी विधि से शांत रखो। और जो भी हमारे गुण हैं, जिसको बाबा कहता है प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, रहम, और सबसे बड़ी बात संतुष्टता, प्रसन्नता और सहनशीलता, ये सब एंटीडोट टू एंगर है। तो जब हमारे ये गुण हमारे अंदर जीवन में आने लगते हैं, विकसित होते हैं, तो गुस्सा अपने आप विदाई ले लेता है। इसीलिए जो भी महापुरुष हुए उनको हम देखते हैं, है ना, उनको नहीं गुस्सा आता था क्योंकि उनके अंदर वो प्रेम, मानवता के प्रति प्रेम, दया, क्षमा, करुणा। ऐसे ब्रह्मा बाबा को भी हमने देखा, जो भी हमारी दादियां थी, क्योंकि उनके वो गुण जो थे वो पूर्ण थे, विकसित थे, तो कभी भी वो गुणों के कारण सहज ही दूसरों की गलती को क्षमा कर देते हैं, उनके प्रति वो रहम का भाव है, करुणा का भाव है। तो ये गुण हम जीवन में जितना अपनाते हैं, बढ़ाते हैं, उतना हमारा गुस्सा अपने आप विदाई लेता है। फिर अपेक्षा नहीं रखें हम दूसरों से, कई बार बहुत अपेक्षाएं रखते हैं तो वो पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए? अपेक्षा रखने का नहीं, दातापन का होना चाहिए। हमें देना है, ये मेरे लिए करे नहीं, मैं इनके लिए कितना कर सकती हूँ। बाबा यही सिखाते हैं ना, हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं कि लेवता बनने वाली हैं, क्या बनने वाले हैं? तो जितना देवता बनेंगे, जितना हमारा दातापन का स्वभाव होगा, जैसे बाबा हैं, ऐसे ही हम कभी भी, हमें दूसरों से जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। जैसे कहा ना, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं किया इसलिए गुस्सा आता है, मेजर कारण तो यही है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, ये हमारा भाव ज्यादा होना चाहिए। और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको हम मान लें। कई बार सूक्ष्म अहम के कारण हम अपनी गलती नहीं मानते और उसके कारण फिर वो बात बढ़ती जाती है। तो अगर हमने सॉरी बोला तो बात वहीं खत्म हो जाती है, नहीं तो फिर एक दूसरे पर हम क्रोध करते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर देते हैं। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है और टाइम लिमिट बहुत जबरदस्त है। हाँ, और मानो फिर भी हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे, हाँ, इतना ज्ञान सुनते हैं, बाबा ने हमें सब समझ दे दी, लेकिन फिर भी जब टाइम आता है तो गुस्सा आ ही जाता है और फिर बाद में सोचते हैं अरे करना तो नहीं था। तो क्या करना चाहिए? रीप्रोग्रामिंग। योग में जब हम बैठते हैं, अमृत वेला, जब भी हम पावरफुल योग कर रहे हैं, अमृत वेला करें, शाम का योग करें, योग करने के बाद हम अपने मन को, सबकॉन्शियस माइंड को थॉट्स दें। हाँ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हम देखें कौन से कारण से मुझे, किसकी बात से, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति होता है जिस पर हमें ज्यादा गुस्सा आता है, माना उसकी कोई भी बात हम सहन नहीं कर पाते, तो आप देखो क्यों हम इस पर गुस्सा कर रहे हैं, पहले आप चेक करो। फिर समझ में आ जाता है, मानो ये बात नहीं मानता इसलिए, झूठ बोलता है इसलिए, या ऐसा बिहेव करता है इसलिए, तो आप अपने मन को समझाओ, ये मेरी बात नहीं मानेंगे तो भी मुझे इनसे शांति से बात करनी। अब ऐसा नहीं वो बदल जाएंगे, किसको बदलना है, मुझे बदलना है, तो आप अपने मन को वो प्रोग्रामिंग दे रहे हैं कि वो ऐसा करेगा तो भी मुझे कैसा बिहेव करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जब मैंने ये डाल दिया तो जब वो व्यवहार करेगा वैसा, आपको तुरंत वो याद आ जाएगा और फिर हम नहीं करेंगे। और अगर करेंगे भी तो भी क्या होगा, तो भी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, मानो फिर भी हम कर जाते हैं, एक बार, दो बार, चार बार, दस बार हम फेल हो जाएंगे, लेकिन ग्यारहवीं बार हम विजयी हो जाएंगे और फिर हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब इस संस्कार पर मैं विजयी बन सकती हूँ। तो योग में हम अपने आप को वो प्रोग्रामिंग दें तो वो चेंज हो जाएगा हमारे अंदर। और कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्से को पी लेते हैं, ये होता है गुस्से को जो हम व्यक्त करते हैं, गुस्से को पीते हैं तो वो भी नुकसान करता है। तो ऐसे समय पर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, माना लिखें, जैसे बाबा को हम पत्र लिखते हैं तो हम लिखें कि क्यों इसने ऐसा बोला, तो मुझे क्या क्या फीलिंग्स आ गई, तो हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया तो वो जो नेगेटिव इफेक्ट मेरे शरीर पर होने वाले थे वो फिर नहीं होंगे। और कई बार उसके लिए हम एक्सरसाइज वगैरह करें, अगर हम जो भी गेम खेल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, उससे हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स बनते हैं जो टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और साथ में हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा लें जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और हमेशा हमें याद रखना है कि हम गुस्सा करते हुए किसी को भी अच्छे नहीं लगते। आप अपना चेहरा अगर देख लेंगे ना उस समय मिरर में, तो कितना बिगड़ा हुआ चेहरा होता है व्यक्ति जब गुस्सा करता है। सबसे अच्छा चेहरा कब होता है? जब व्यक्ति मुस्कुराता है। तो आप याद कर लो, गुस्सा करते हुए हम कितने बुरे लग रहे हैं, तो आप गुस्सा नहीं करेंगे और ही मुस्कुराने लगेंगे। और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, यहाँ चिन को यहाँ दबाते हैं तो हमारा जॉ रिलैक्स हो जाता है। तो मानो नहीं कंट्रोल हो रहा, आपने उस समय यहाँ अपना प्रेस किया तो जॉ रिलैक्स होते ही आप बोल नहीं पाएंगे, है ना। तो क्योंकि गुस्से में क्या होता है, हम बोलते ही हैं। तो ये सब विधियां हैं जो बाबा ने हमें बताई। साथ साथ अगर हम थोड़ा साइंटिफिक तरीके से भी जो हमने आपको समझाया उसे भी समझ कर हम उसे चेक करेंगे और चेंज करेंगे, तो निश्चित रूप से जो बाबा हमसे अपेक्षा करते हैं कि ये क्रोध का अक्का फूल हम बाबा पर पूरी तरह चढ़ा दें तो हम चढ़ा पाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही सुंदर रीति से हमें समझाया कि हम क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और अभी हम 1 मिनट साइलेंस करेंगे, आपका ब्रेक का टाइम है। आप सीधा यहाँ से उठेंगे साइलेंस में, नीचे वाले डाइनिंग हॉल में जाएंगे, वहाँ पे आपके लिए रिफ्रेशमेंट है और 12 बजे से पहले पहले हॉल में आके बैठ जाएंगे। ओम शांति। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम।